नमस्कार। आज हम एक ऐसे उपन्यास की बात करने वाले हैं जो कहानी तो है पर सच कहूं तो आज की हकीकत पर एक तीखा तंज ज्यादा लगती है। लिडिया मिलेट का 2020 का उपन्यास ए चिल्ड्रंस बाइबल।
और ये किताब बहुत खास है, इसे नेशनल बुक अवार्ड के लिए भी चुना गया था।
हाँ, और इसे क्लाइमेट फिक्शन या जिसे क्लाइफाई कहते हैं
बिल्कुल,
उसकी एक बहुत ही अहम रचना माना जाता है।
पर बात सिर्फ जलवायु परिवर्तन की नहीं है, मतलब ये उपन्यास उससे कहीं ज्यादा गहरा सवाल पूछता है।
क्या सवाल?
सवाल ये है कि तब क्या होता है जब एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी की देखभाल का जो एक बुनियादी वादा होता है उसे ही तोड़ देती है।
जब वो सामाजिक समझौता ही टूट जाए जो सबको जोड़े रखता है।
बिल्कुल, मिलेट हमें उसी टूटन के मतलब बिल्कुल बीचों बीच ले जाती
तो
हैं।
चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं।
सेटिंग तो बहुत ही खूबसूरत है।
हाँ, एक बड़ा सा आलीशान वेकेशन होम किसी झील के किनारे।
सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। लगता है वहां कुछ अमीर प्यार हैं, कॉलेज के पुराने दोस्त अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने आए हैं, पर असल में ये छुट्टियां बच्चों के लिए हैं ही नहीं।
ये तो बस एक बहाना है ना, उनके लिए अपनी जवानी की यादों में, शराब में, नशे में डूबने का।
एकदम सही। और इस पूरी तस्वीर में बच्चे कहीं हैं ही नहीं, वो बस बैकग्राउंड में एक शोर की तरह हैं।
माता पिता उनसे पूरी तरह बेपरवाह।
हाँ, जैसे बच्चे कोई और ही प्रजाति हों। और इसी दूरी की वजह से बच्चों ने अपना एक अलग ही ग्रुप, एक कह सकते हैं कबीला बना लिया है।
और वो अपने माँ बाप को कैसे देखते हैं?
कभी घृणा से, कभी दया से, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी खत्म होती हुई सभ्यता को स्टडी कर रहा हो।
ये जो आपने कहा ना, खत्म होती सभ्यता, मुझे लगता है उपन्यास की आत्मा यही है।
बिल्कुल,
और हमारी नरेटर जो कहानी सुना रही है वो एक किशोरी है, इवी। उसकी आवाज में एक अजीब सा व्यंग्य है, लेकिन वो देखती सब कुछ बहुत साफ है।
हाँ, उसकी नजरों से ही हमें उन पढ़े लिखे अमीर माँ बाप का खोखलापन दिखता है। वो दुनिया बचाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जो संकट उनके दरवाजे पर खड़ा है उसे देखने से इनकार कर देते हैं।
और फिर उस घर में एक चीज मिलती है जो कहानी का मतलब एक तरह से सेंट्रल मेटाफर बन जाती
वो
है।
बच्चों वाली बाइबिल।
हाँ, इवी का छोटा भाई है जैक, जिसे सब बहुत प्यार करते हैं। उसे मिलती है वो किताब।
और वो तो मासूम है, वो उस बाइबिल की कहानियों जैसे बाढ़, विपत्ति या फिर पलायन।
और अपने आसपास जो हो रहा है उसमें एक अजीब सी समानता देखने लगता है।
हाँ, और यहाँ मिलेट एक बहुत ही दिलचस्प काम करती हैं।
क्या
उन्होंने आज के दौर की कहानी के लिए बाइबिल की रूपरेखा क्यों चुनी?
ये एक अच्छा सवाल है?
शायद वो ये कह रही हैं कि जलवायु संकट इतना बड़ा है, इतना विनाशकारी है कि हमारी रोजमर्रा की भाषा उसे बयान ही नहीं कर सकती।
मतलब हमें उसे समझने के लिए महाप्रलय, एक्सोडस, ऐसे बड़े पौराणिक प्रतीकों की जरूरत है।
मौसम की चेतावनियों में एक बहुत बड़े तूफान की खबर आती है, लेकिन माता-पिता वो इसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं ये तो मीडिया का फैलाया हुआ डर है।
उनके लिए प्रलय बस एक एक बौद्धिक बहस है जिसे वो शराब पीते हुए कर सकते, कोई असली खतरा नहीं।
जबकि बच्चे उसे पूरी गंभीरता से लेते हैं, और यही कहानी में पहली बार शक्ति का संतुलन बदलता है।
बच्चे जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं।
हाँ, वो खिड़कियों पर तख्ते लगाते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं। वो असल में बड़ों वाली भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माता-पिता किसी काम के नहीं हैं।
और फिर तूफान आता है।
और कैसा आता है, बिल्कुल बाइबल की कहानियों जैसा प्रलयकारी। घर की छत उड़ जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी।
वो सुरक्षा का जो एक भ्रम था वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और जब बाढ़ का पानी और बढ़ने लगता है तब बच्चे एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं।
एक ऐसा फैसला जो जो दिल दहलाने वाला है, पर शायद जरूरी भी। ईवी के नेतृत्व में वो अपने नशे में धुत लाचार माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं।
और एक छोटी सी मोटर बोट में छोटे बच्चों और जरूरी सामान के साथ निकल जाते हैं।
ये कहानी का एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है। क्या ये बच्चों की क्रूरता है या सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश
ये उनका एक्सोडस
है ना?
अपनी उस सड़ चुकी दुनिया से एक तरह का पलायन।
हाँ, और वो छोटी सी नाव उनके लिए नूह की किश्ती बन जाती है जिस पर भविष्य टिका है।
पर क्या ये वाकई क्रूरता है
हाँ,
या फिर ये जिंदा रहने की एक मजबूरी है?
मतलब
मतलब शायद मिलेट यही दिखा रही हैं कि जब पुरानी पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल हो जाती है तो नई पीढ़ी को जिंदा रहने के लिए ऐसे कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं।
वो अपने माता-पिता को नहीं छोड़ रहे हैं।
वो उस दुनिया को छोड़ रहे हैं जिसने उन्हें पहले ही छोड़ दिया था।
सही कहा। एक मुश्किल सफर के बाद वो एक वीरान से फार्म हाउस में पनाह लेते हैं जो ऊंची जगह पर है।
और वहां एक नया समाज बनाने की कोशिश करते हैं।
हाँ, एक ऐसा समाज जो सहयोग पर, एक दूसरे की देखभाल पर आधारित हो।
कुछ समय के लिए तो लगता है कि उन्होंने एक छोटा सा यूटोपिया, एक आदर्श दुनिया बना ली है।
पर पुरानी दुनिया का बोझ इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ता है?
बिल्कुल, उनका ये छोटा सा स्वर्ग तब बिखर जाता है जब उनके माता पिता कमजोर, बीमार और बहुत ही दयनीय हालत में उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं।
और वो बचाने वाले बनकर नहीं आते?
नहीं, वो शरणार्थी बनकर आते हैं।
और यही कहानी अपने सबसे शक्तिशाली और विडंबनापूर्ण मोड़ पर पहुंचती है।
भूमिकाएं पूरी तरह से उलट जाती हैं।
बिल्कुल, जिन बच्चों को देखभाल की जरूरत थी वे अब देखभाल करने वाले बन गए हैं, और जो माता पिता उनके रक्षक थे वे अब अपने ही बच्चों की दया पर जी रहे हैं। बच्चे थके हुए, बोझ से दबे वयस्क बन गए हैं, और वयस्क लाचार बच्चों में बदल गए हैं।
ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। इवी और दूसरे बड़े बच्चों को अब न सिर्फ छोटे बच्चों का बल्कि अपने गैर जिम्मेदार माँ बाप का भी पेट पालना है।
ये उस पीढ़ी का बोझ है जिसे विरासत में एक टूटी हुई दुनिया मिली है,
और अब उसे उस दुनिया को बनाने वालों को भी संभालना है।
लेकिन ये नई दुनिया भी कोई जन्नत नहीं है। पर्यावरण के विनाश का असर अब दिखने लगता है।
वो बीमारी,
हाँ, शायद दूषित पानी की वजह से एक अजीब बीमारी फैलती है, और उसका शिकार होता है कहानी का सबसे मासूम किरदार, छोटा जैक।
वही बच्चा जिसने आने वाले प्रलय को सबसे पहले पहचाना था।
उपन्यास का आखिरी हिस्सा जैक को बचाने की एक बेबस कोशिश है। माता पिता वो सिर्फ खाली दिलासा देते हैं, बेकार की सलाह देते हैं, कर कुछ नहीं पाते।
सारी जिम्मेदारी एक बार फिर इवी और दूसरे किशोरों पर आ जाती है, और उपन्यास एक बहुत ही अनिश्चित मोड़ पर खत्म होता है। हमें पता नहीं चलता कि जैक बचेगा या नहीं।
पर उस नाउम्मीदी के बीच भी इवी का अपने भाई के लिए जो अटूट प्यार है, वो देखभाल है, वो एक छोटी सी उम्मीद की किरण की तरह है।
शायद मिलेट यही कह रही हैं कि जब सारे बड़े सिस्टम फेल हो जाते हैं तो अंत में बस इंसानी रिश्ते, आपसी देखभाल ही बचती है।
इस कहानी में एक बहुत ही दमदार लाइन आती है, बच्चे महसूस करते हैं हम अपने ही पूर्वज होंगे।
We will be our own ancestors.
इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि पिछली पीढ़ी ने उन्हें इस तरह अकेला छोड़ दिया है कि वे अब खुद को उनका वंशज भी नहीं मान सकते।
उन्हें एक नई दुनिया, नए नियम, एक नया इतिहास, सब कुछ शून्य से शुरू करना होगा।
और यही बात इस उपन्यास को आज के समय में इतना जरूरी बना देती है। ये माता पिता कौन है? ये वही शिक्षित, सुविधा संपन्न वर्ग है जो जलवायु परिवर्तन को बौद्धिक स्तर पर तो समझता है
लेकिन अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं है।
हाँ, वो खतरे को एक ऐसी चीज की तरह देखते हैं जो भविष्य में कभी होगी। और बच्चे आज के युवा क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स का प्रतीक है। उनमें गुस्सा है, बेचैनी है,
और हालात को अपने हाथ में लेने की एक जबरदस्त भावना है।
बिल्कुल, पर मिलेट की खूबी ये भी है कि वो कहानी को उपदेशात्मक नहीं होने देती।
इवी की आवाज की वजह से,
हाँ, उसका जो व्यंग्य है, जो गहरा काला हास्य है, वो इन भयानक घटनाओं के बीच भी वयस्कों की मूर्खता को और ज्यादा उजागर करता है।
जब सब कुछ बिखर रहा हो तो कभी कभी उस बेतुकेपन पर हंसना ही एकमात्र तरीका बचता है।
अंत में ये उपन्यास एक आईने की तरह है, है ना? ये हमें पूछने पर मजबूर करता है कि इस कहानी में हम कहाँ हैं?
क्या हम उन माता पिता की तरह हैं जो विकर्षणों में डूबे हुए हैं और आने वाले संकट से आंखें मूंद रहे हैं,
या हम उन बच्चों की तरह हैं जो कठोर सच का सामना करने और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं?
ये कहानी निराशा के बीच युवाओं के लचीलेपन और देखभाल की इंसानी क्षमता में एक छोटी मगर बेहद जरूरी उम्मीद जगाती है। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।